بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. شروتا, آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے. آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے. قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
صدق اللہ العظیم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. ہی پیغمبر, اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے, جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا, جس نے بھاگیہ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا, جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا. پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں, سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے. اور ہم آپ کو ہر بھلے کاری کے لیے تیار کر دیں گے, اتا نصیحت کیجئے. یدی نصیحت لاپ پرد ہو اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا, کنتو اتین درباگ والا اس سے کترائے گا, وہی جو بڑی آگ میں گر پڑے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا نہ ہی جیے گا۔ نشچت روپ سے جس نے اپنے آپ کو پوتر بنا لیا وہ سفل ہو گیا، اور جس نے اپنے پالنہار کے نام کا اسمرن کیا پھر نماز ادا کی۔ نہیں، بلکہ تم تو سانسارک جیون کو پراتھمکتا دیتے ہو، جبکہ پرلوک ادھک اتم اور شیش رہنے والا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گانتانت ایران کی آواز۔ آج گروار ہے اور دیبہش کی 22 مئی کی 12 اور شوال کی 10 تاریخ۔ شوتاؤ، ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیہ پسند آئے گا۔ پتر ویوہار کے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@wsirib.ir۔ جبکہ تازہ سماچاروں سے اوگت ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیں، پتہ ہے parstoday.com/hi۔ شروع ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ سدا کی بھانتی دیش ودیش کے سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راج نیتک چرچا کا دینک کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات آپ سنیں گے ساپتاہک کاریکرم آج کی بات، اور سبھا کا انتم اور دوسرا ساپتاہک کاریکرم ہوگا سفل مہیلائیں۔ شروتاؤ، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ مریم مہدادی اور محمد مہدی سے سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سر۔ غتر نریش ایک دوسری یاترا پر تہران پہنچے۔ روسی راشٹرپتی نے کہا کہ پشچم دنیا کو بھینٹ چڑھانے کے لیے تیار ہے۔ سری لنکا کے پورو پردھان منتری اور ان کے پریوار نے نوسینک اڈے میں شرن لے رکھی ہے۔ بھارت میں 434 کروڑ روپے کی ہیروئن پکڑی گئی ہے۔ اب وستار سے سماچار سنیے۔
قطر نریش شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایک دیوسی یاترا پر تہران پہنچے، جہاں راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے ان کا سواگت کیا۔ قطر نریش کے ساتھ ایک اچ استریہ راجنیتک اور آرتھک پرتنیدھی منڈل بھی ایرانی ادھیکاریوں سے وارتا کے ادیش سے تہران آیا ہے۔ آشہک ملاقات کے بعد قطر نریش اور ایرانی راشٹرپتی سنیکت پریس کانفرنس کو سمبودھت کریں گے۔ ज्ञात है कि जारी वर्ष के फरवरी महीने में ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी कतर नरेश के निमंत्रण पर गैस निर्यात करने वाले देशों के नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए दोहा की यात्रा पर गए थे, और कतर नरेश की आज होने वाली तेहरान यात्रा को उसका जवाब समझा जा रहा है, और इस यात्रा में वे ईरानी राष्ट्रपति से विभिन्न विषयों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। 3 महीने पहले जब ईरानी राष्ट्रपति कतर की यात्रा पर गए थे तो 14 सहकारिता सहमतियों पर समझौते क्षमा कीजिए 3 महीने पहले जब ईरानी राष्ट्रपति कतर की यात्रा पर गए थे तो 14 सहकारिता सहमतियों पर हस्ताक्षर हुए थे। उम्मीद है कि दोनों देशों के नेता उन सहमति पत्रों के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे जिन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
اسلامی گنتنتر ایران کے ودیش منتری حسین عامر عبداللہ نے کہا کہ علاقے کی سیاسی جنتا کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ سرکار اسرائیل کی آتنکی سرکار کے ساتھ سامان رشتے رکھیں۔ ایران کے دورے پر آنے والے لبنان کے سنسکرتی منتری محمد وسام المرتضی سے ملاقات میں حسین امیر عبداللہیان نے شتری حالات اور آپسی سہیوگ کے مدوں کی سمیکشا کرنے کے ساتھ ہی کہا کہ اسرائیلی وستاروات کے مقابلے میں لبنان کی جنتا کا پرتیرود علاقے کے عوام کے لیے ایک اچھا ادھارن ہے اور علاقے کی جنتا کبھی بھی سہن نہیں کر سکتی کہ ان کی سرکاریں بچوں کی ہتائی کرنے والی اسرائیلی سرکار سے رشتے رکھے۔ ودیش منتری نے کہا کہ ایران کی ودیش نیتی میں لبنان کا خاص ستھان ہے اور پشچمی دیشوں کی پابندیوں کے باوجود ایران لبنان کی جنتا اور سرکار کی مدد کے لیے ہر طرح کا سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس ملاقات میں لبنان کے سنسکرتی منتری نے کہا کہ ایران پورے علاقے میں خاص ستھان رکھتا ہے اور لبنان کی کوشش ہے کہ ہر میدان میں ایران کے ساتھ سہیوگ بڑھایا جائے۔
روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ پشچم دنیا پر ورچسو جمانے اور اس پر شاسن کرنے کے لیے باقی دنیا کو بھیڑ چڑھانے کے لیے تیار ہے۔ سماچار ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے انوسار روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے آج آرتھک معاملوں و سمسیاؤں کے سمبندھ میں آیوجت ایک بیٹھک میں کہا کہ روس کے خلاف پرتبندھوں کے پریڑا میں کچھ دیشوں میں بھوک کا جو سمبھاوت خطرہ اتپن ہو گیا اس کا ذمہ دار پشچم ہے اور وہ دنیا پر ورچسو جمانے کے لیے باقی دنیا کو بھیڑ چڑھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر روس کے خلاف پرتبندھ جاری رہتے ہیں تو سمبھو ہے کہ یورپ کو ان چیزوں و پریڑاموں کا سامنا کرنا پڑے جن کی بھرپائی بعد میں کٹھن ہوگی اور اس استھتی کا اصلی ذمہ دار کچھ پشچمی دیش ہیں۔ روسی راشٹرپتی نے اسی پرکار پشچم کے پرتبندھوں سے مقابلے کے لیے اپنے دیش کی اور سے کی جانے والی کارروائیوں کے سمبندھ میں کہا روس مضبوطی سے ودیشی چنوتیوں کا مقابلہ کرے گا۔ گیات رہے کہ روس نے 24 فروری سے یوکرین کے خلاف وشیش سینیہ آپریشن آرمبھ کیا تھا جو اب تک جاری ہے اور اس میں اب تک دونوں پکچوں کی اور سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔
شری لنکا کی عدالت نے اسے دیش کے پورو پردھان منتری اور ان کے سہیوگیوں کے دیش چھوڑنے پر روک لگا دی ہے۔ شری لنکا میں وکیلوں کے ایک سموہ نے مہندا راجپکشے اور ان کے سہیوگیوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس مکھیالے میں شکایت درج کرائی تھی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ مہندا راجپکشے اور ان کے سہیوگیوں نے سوموار کو سرکار ورودھی پردرشنکاریوں کے خلاف حملے کرنے کے لیے لوگوں کو کتھت طور پر اکسایا تھا۔ شری لنکا میں جاری سنکٹ کے دوران پورو پی ایم مہندا راجپکشے اور ان کے سہیوگیوں کے دیش چھوڑنے پر شری لنکائی کورٹ نے روک لگا دی ہے۔ شری لنکا میں سرکار ورودھی پردرشنکاریوں پر مہندا راجپکشے سمرتھکوں کے حملے کے بعد دیش میں ہنسا بھڑک اٹھی تھی۔ مہندا راجپکشے کے پردھان منتری پد سے استعفیٰ دینے کے بعد بھی جنتا کا غصہ شانت نہیں ہوا تھا اور پردرشنکاریوں نے پردھان منتری آواس ٹیمپل ٹری میں گھس کر آگزنی کی تھی۔ اس کے بعد ایک وشیش ہیلی کاپٹر سے پورو پردھان منتری مہندا راجپکشے اور ان کے پریوار کو ترنکو مالی میں ایک نو سینا بیس لایا گیا تھا۔ تب سے انہوں نے وہیں پر شرن لی رکھی ہے۔ یہ شری لنکا کا اتر پوری بھاگ ہے پرنتو جنتا نے اس نو سینا بیس کو بھی گھیر رکھا ہے۔
شری لنکا بڑے گمبھیر آرتھک دور سے گزر رہا ہے۔ سرکار نے بھیانک آرتھک سنکٹ سے نپٹنے کی کوشش کی جو ناکام رہی، جس کے بعد پردرشنوں اور ہنسا کی لہر پھیل گئی۔ سرکشا بلوں کو آدیش دیا گیا ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی ماریں۔ شری لنکا کی سینا نے پشت کیا ہے کہ راشٹرپتی کے بڑے بھائی اور خود دو بار راشٹرپتی رہ چکے مہندا راجپکشے دیش کے پوروتری علاقے میں نو سینا کے ایک اڈے میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ دیش ویاپی کرفیو کے باوجود ویبھن شہروں میں آگزنی کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور کولمبو کے قریب دکانوں اور پورو پردھان منتری کے بیٹے کی ایک نجی تفریح گاہ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ راشٹرپتی گوٹابایا راجپکشے نے ایک مہینے پہلے شروع ہونے والے پردرشنوں کے بعد پہلی بار راشٹر کو سمبودھت کیا، جس میں انہوں نے قانون کا پربھوتو بحال کرنے کا سنکلپ دہرایا۔ بھاشن میں اپنے تیاگ پتر کی مانگ کو نظر انداز کرتے ہوئے راشٹرپتی نے کچھ ادھیکار سنسد کو دینے اور نئے پردھان منتری کی نیوکتی کی پیشکش کی، مگر اس سندربھ میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا۔
بھارت میں سپریم کورٹ نے اوپنیویشک اور دور کے ایک ویوادت قانون پر روک لگا دی ہے، کیونکہ بہت سے گلیاروں کی شکایت تھی کہ سرکار اس قانون کے سہارے اپنے آلوچکوں کو کچل رہی ہے۔ عدالت نے سرکار سے کہا کہ وہ اس قانون کے تحت اس سمے تک کوئی مقدمہ درج نہ کرے جب تک عدالت اس کے بارے میں دائر یاچکاؤں کی سنوائی پوری نہ کر لے۔ عدالت نے آدیش دیا کہ بغاوت کے قانون کے تحت درج سارے مقدموں پر کارروائی روک دی جائے۔ سرکار پر آروپ ہے کہ وہ اس قانون کو راجنیتاؤں، پترکاروں اور سرکار کے آلوچکوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ منگلوار کو سرکار کی اور سے کہا گیا تھا کہ وہ پہلے اس قانون کا بچاؤ کرے گی اور پھر اس کا جائزہ لے گی۔
راجسو خفیہ ادھیکاریوں نے دلی کے اندرا گاندھی انتراشٹری ہوائی اڈے کے کارگو پرسر سے 62 کلو گرام ہیروئن ضبط کی ہے۔ برآمد کی گئی ہیروئن کی قیمت انتراشٹری بازار میں 434 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ یہ بھارت میں ہیروئن کی اب تک کی سب سے بڑی برآمدگی ہے۔ راجسو خفیہ نردیشالہ نے بلیک اینڈ وائٹ کوڈ نام کے ابھیان میں ایک کارگو کھیپ سے 55 کلو گرام ہیروئن ضبط کی، جسے ٹرالی بیگ گھوشت کیا گیا تھا۔ یہ کارگو انٹبے یوگانڈا سے روانہ کیا گیا تھا اور دبئی ہوتے ہوئے نئی دلی کے اندرا گاندھی انتراشٹریہ ہوائی اڈے کے ایئر کارگو کمپلیکس پہنچا تھا۔ اس کے بعد پنجاب اور ہریانہ میں توریت انورتی کاروائی کے کارن 7 کلو گرام ہیروئن اور 50 لاکھ روپے کی نقد راشی بھی پکڑنے میں سفلتا ملی ہے۔ ضبط کی گئی اس 62 کلو ہیروئن کی قیمت 434 کروڑ روپے آنکی گئی ہے۔ بھارتیہ وت منترالے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مادک پدارتھوں کی تسکری پر اپنی کاروائی جاری رکھتے ہوئے راجسو خفیہ نردیشالہ نے ایک اور معاملے کا بھنڈا پھوڑ کرتے ہوئے 10 مئی کو ایک ایئر کارگو کھیپ سے 62 کلو گرام ہیروئن ضبط کی۔ یہ بھارت میں کوریئر کارگو میں ہیروئن کی اب تک کی سب سے بڑی برآمدگی ہے۔
تبت ایئر لائنز کا ایک یاتری ویمان درگھٹنا گرست ہو گیا۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے انوسار تبت ایئر لائنز کا پلین TV9833 پشچمی چین میں چونکنگ جیانگ بے انتراشٹریہ ہوائی اڈے کے رن وے میں اتر گیا اور اس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ گھٹنا کے سمے ویمان میں 113 یاتری اور سیوا دل کے 9 سدسیہ تھے۔ سرکاری پرسارک سی سی ٹی وی کے مطابق گروار صبح پوسٹ کیے گئے ویڈیو فوٹیج میں چونکنگ جیانگ بے انتراشٹریہ ہوائی اڈے کے ٹرمیک پر تبت ایئر لائنز کے ویمان سے آگ کی لپٹیں اور کالا دھواں نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگ ٹیک آف کے وقت لگی۔ ویمان میں سوار سبھی 113 یاتری اور کرو ممبرس کو سرکشت نکال لیا گیا ہے۔ استھانیہ میڈیا کے مطابق لگ بھگ 40 یاتریوں کو ہلکی چوٹیں آئی ہیں، جنہیں اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔
یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ عراق کی سنسد نے بدھوار کو کٹھور سور میں ایک قانون پارت کیا ہے، جس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ اسرائیل سے ہرگز کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ قانون میں ویرودیوں کو چیتاونی بھی دی گئی ہے کہ انہیں خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عراقی سنسد میں صدر دھڑے کی اور سے بل پیش کیا گیا تھا، جسے تتکال صدن کی منظوری مل گئی۔ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا رشتہ اپرادھ ہے اور اسرائیل سے راجنیتک، کوٹنیتک، آرتھک، سامرک یا سانسکرتک کسی بھی طرح کے سمبندھ نہیں رکھے جا سکتے۔
پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری نے بھارت نیانترت کشمیر میں چناؤں کے لیے کیے گئے پریسیمن کو غیر قانونی کارروائی قرار دیتے ہوئے سنیکت راشٹر سنگھ میں اس کی شکایت کی ہے۔ بلاول نے سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کے ادھیکش اور مہا سچیو کو خط لکھ کر کشمیر میں غیر قانونی روپ سے کی گئی حد بندی کی اور ان کا دھیان کھینچا ہے۔ پتر میں لکھا گیا ہے کہ بھارت سرکار مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کی سازش پر کام کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। यमन के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत ने यमन संकट के समाधान के लिए ईरान के प्रयासों की सराहना की है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
यमन के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत ने यमन संकट के समाधान के लिए ईरान द्वारा इस संस्था की मदद किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। यमन संकट के शांतिपूर्ण हल के लिए इस्लामिक गणतंत्र ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई वार्ताओं को अंजाम दिया और इसी परिधि में ईरान के उप विदेश मंत्री अली असगर खाजी ने बुधवार को यमन के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत हैंस ग्रुनबर्ग से विचार विमर्श किया। इस्लामिक गणतंत्र ईरान के उप विदेश मंत्री ने यमन में 2 महीने के युद्ध विराम को लागू करने के मुद्दे में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि की कोशिशों का समर्थन करते हुए इसे यमन संकट के समाधान और युद्ध विराम के लिए अभूतपूर्व अवसर करार दिया और कहा कि अगर सभी पक्ष पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने वचनों पर अमल करेंगे तो इस संबंध में अहम सफलता हासिल हो सकती है और अगर इस चरण में भी विफलता हाथ लगी तो यमन संकट और भी जटिल हो जाएगा और लोगों के बीच अविश्वास की खाई गहराती जाएगी। यमन के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत ने भी कहा कि वर्तमान समय में संघर्षरत दोनों ही पक्ष युद्ध विराम को पूरी तरह से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल कर रहे हैं और रुकावटों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर युद्ध विराम की अवधि बढ़ती है तो ये संकट के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम समझा जाएगा। यमन संकट के संबंध में ईरान ने आरंभ से ही इसके राजनीतिक हल पर बल दिया है और कहा है कि सैन्य तरीके से किसी भी संकट का समाधान नहीं किया जा सकता। तेहरान हमेशा से ही यमन युद्ध की समाप्ति का इच्छुक रहा है और उसे ये उम्मीद है कि हालिया युद्ध विराम संकट के समाधान के लिए राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने का बेहतरीन साधन हो सकता है। यमन की नेशनल साल्वेशन सरकार और हमलावर सऊदी गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महीने के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी है। ये युद्ध विराम 2 अप्रैल से लागू हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने 12 अप्रैल के अपने भाषण में यमन की मजलूम जनता के साहस की सराहना करते हुए सऊदी अधिकारियों को बेहतरीन मशवरा देते हुए कहा कि क्यों उस युद्ध को जारी रखे हुए हैं जिसके बारे में आपको विश्वास है कि जीत मिलने वाली नहीं है, कोई रास्ता और तलाश करें और खुद को इस जंग से मुक्ति दिलाएं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि फिलहाल यूक्रेन में संघर्ष विराम की संभावना नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट अहमद अब्बास की जबानी।
संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि फिलहाल यूक्रेन में संघर्ष विराम की कोई संभावना नहीं है। आलोचकों का महासचिव से सवाल है कि फिर आप पुतिन से मुलाकात के लिए क्यों गए थे? गुटेरेस कहते हैं कि रूसी अधिकारियों से संपर्क जारी रहना बहुत जरूरी है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस अधिकारी ने कहा कि जंग यूक्रेन की सीमाओं से बाहर जाएगी और लंबी झड़पें और भीषण होंगी, यानी जंग की आग अभी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। यानी तीसरा विश्व युद्ध। चेक ने भी ऐलान कर दिया है कि उसने यूक्रेन की मदद के लिए 100 सैनिक रवाना किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रमुख नैंसी पेलोसी का शुक्रिया अदा किया कि यूक्रेन के लिए 40 अरब डॉलर की मदद की मंजूरी दी गई है। यह अमरीका के 2022 के कुल सुरक्षा बजट का 5% है। अगले सप्ताह फिनलैंड और स्वीडन औपचारिक रूप से नेटो में शामिल होने की दरखास्त देंगे।
anyway.
संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के राजदूत कहते हैं कि नेटो और अमरीका इस समय यूक्रेन को बलि चढ़ाने पर तुले हुए हैं। एक और खबर यह है कि एलन मस्क ने स्टारलिंक पर रूस के साइबर हमले की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि 80 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक अपना घर बार छोड़ने पर विवश हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में हर हफ्ते यूक्रेन संकट पर 1-2 बैठकें हो रही हैं। अलबत्ता प्रचारिक हंगामे के अलावा इन बैठकों का कोई और नतीजा नहीं निकल रहा है। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं भारत का। दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
भाजपा नियंत्रित दिल्ली नगर निगम ने अपनी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई जारी रखते हुए आज दक्षिण पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र मदनपुर खादर में कई ढांचों को ध्वस्त कर दिया, जिसे उसके अनुसार अवैध रूप से बनाया गया था। स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बीच, जिनका कहना था कि उन्हें पहले से सूचित नहीं किया गया था, बुलडोजरों से 6-मंजिला इमारत को गिराने का प्रयास किया गया और 3-मंजिला इमारत गिरा दी गई। कई मजदूर नई निर्मित इमारत के भीतर हथौड़ा चलाते हुए देखे गए। दिल्ली नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां भी इलाके में मौजूद थे, जिनका कहना है कि इमारत का ये ढांचा अवैध नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर अवैध निर्माण मिलता है तो वे इसे ध्वस्त करने में नगर निगम की सहायता करेंगे। ज्ञात रहे कि अमानतुल्लाह खां ने इससे पहले शाहीन बाग में भी ऐसी ही कार्रवाई को रोक दिया था। अमानतुल्लाह खां का कहना है कि वे गरीबों के मकान बचाने के प्रयास के दौरान जेल भी जाने को तैयार हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने उनके मकान बनते समय मोटी रकम ली थी और अब इन मकानों को गिराने आए हैं। स्थानीय लोगों ने डिमोलिशन की कार्रवाई के दौरान पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद कहा जाता है कि पुलिस पर पथराव हुआ। स्थानीय लोगों ने पथराव का आरोप पुलिस पर लगाया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर गरीबों के मकानों पर चल रहा है, जबकि इसे बेरोजगारी और ईंधन के बढ़ते हुए मूल्यों पर चलना चाहिए था। दिल्ली नगर निगम का, जहां भाजपा बहुमत में है, कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो रहा है और आम लोगों का कहना है कि भाजपा चुनाव में ये दिखाना चाहेगी कि उसने अवैध अतिक्रमण को हटाया है, जबकि दिल्ली में लगभग 1800 अवैध कॉलोनियां हैं जो भाजपा का भी वोट बैंक मानी जाती हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आज की बात, और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम सफल महिलाएं।
आज की बात।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम आज की बात में। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय समाज में जारी दो प्रकार के प्रयासों की। भारत में सांप्रदायिक घटनाएं नई बात नहीं है, इनका इतिहास पुराना है, लेकिन मीडिया और अनेक वर्गों का आरोप है कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, अल्पसंख्यकों पर हमले बहुत तेज हो गए हैं। आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा से अलग अलग दौर के हालात का आकलन तो एक अलग बहस होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि भारत के कई इलाकों से तनाव की घटनाओं की खबरें बार बार आ रही हैं। दिल्ली का जहांगीरपुरी हो या मध्य प्रदेश का खरगोन, कर्नाटक के इलाके हो या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई या फिर राजस्थान के इलाके, कई जगहों की घटनाओं की विस्तृत रिपोर्टें बताती हैं कि जैसे जानबूझकर हालात खराब करने की कोशिश की जाती है। दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संपादक एलपी पंत कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि करौली और जोधपुर की घटना पूर्व नियोजित थी, लेकिन घटना के बाद जिस तरह से उसका प्रबंधन हो रहा है वो प्लानिंग की तरह ही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों भय को एक भावना के साथ जोड़ रहे हैं। भाजपा ने धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण की अपनी सारी सरहदें खोल दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर हैं और उन्हें एक समुदाय का हितैषी बताती है। भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मजबूत जमीन तैयार कर रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा और उससे जुड़े संगठनों पर आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर हालात खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं।
जो राजनीति चल रही देश के अंदर, जिस प्रकार का माहौल बनाने का, हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल, खतरनाक माहौल हो रहा देश भर के अंदर, और उससे अछूता कोई राज्य नहीं है। अभी करौली में हमारी घटना पहले हुई थी तो मुख्य आरोपी बीजेपी के थे। वहां पर राजगढ़ में घटना हुई, अलवर में मंदिर को गिराने वाली बात, वहां बोर्ड बीजेपी का बोर्ड है, 35 मेंबर जो है पार्षद है वहां पर, उसमें 34 बीजेपी के थे। प्रस्ताव पार किया, उन्होंने मंदिर तोड़फोड़ करी, बदनाम कांग्रेस कर रहे थे। जोधपुर में कुछ अफवाह फैला करके कुछ मिस्टी भी लोगों ने ये बात फैलाई, पर सबसे अच्छी बात है कि अभी तक हमने जो कंट्रोल किया, एक भी कैजुअलिटी कहीं नहीं हुई है। कई करौली में दुकानें जली थी वहां पर, और छोटी मोटी घटनाएं बाकी जगह हुई है। जोधपुर में भी कुछ घटनाएं हुई है छोटी बड़ी, बाकी वहां पर कैजुअलिटी नहीं होने दी हम लोगों ने, शांति बनी हुई है। मैंने खुद ने तमाम अधिकारियों की मीटिंग लेके भेज रखा वहां पर।
अशोक गहलोत का कहना है कि कहीं से कोई चूक नहीं हुई है, केंद्र सरकार के भीतर बैठे हुए लोग राज्यों में योजना के साथ हालात खराब कर रहे हैं।
एजेंडा अगर सरकार, भारत सरकार जो है, अगर भारत सरकार में बैठे जो लोग हैं आरएसएस के बीजेपी के, वो सरकार के खुद के लोग अगर एजेंडा सेट करेंगे राज्यों के अंदर, कितनी खतरनाक स्थिति बनेगी आप कल्पना कर सकते हो। उनको रोक रहे हैं किसी कीमत पर, इनके मंसूबों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, ये मैंने कह रखा है। दो टूक सब लोगों को भी, पुलिस को कह रखा है, कोई जाति धर्म वर्ग या पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं हो, आपको समान रूप से दृष्टि से एक्शन करना है और किसी कीमत पे हमें वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करना।
राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि हर 5 साल में सत्ताधारी पार्टी बदल जाती है। साल 1993 और 98 इसमें अपवाद हैं। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के सपने जरूर देख रही होगी, लेकिन सच ये भी है कि जिला जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो भाजपा के प्रयोग को विफल करने की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही है। राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है। बीजेपी पर जिम्मेदारी डालकर वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक कार्यक्रम में एक बच्चे के सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता और मशहूर वक्ता कन्हैया कुमार का कहना था कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर ऐसे विषय उठाए जाते हैं जिनका संबंध भावनाओं और आस्थाओं से होता है।
देखिए, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में वो हर इंसान है जो आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, खतरे में वो हर इंसान है जो आज गरीबी से जूझ रहा है, खतरे में वो हर इंसान है जो भेदभाव से जूझ रहा है। ये बात इसलिए बोली जाती है ना ताकि असली सवाल को गुमराह किया जा सके। लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में ये बात समझ गए हैं ना, बड़ों को भी बहुत जल्दी अकल आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। असल जो खतरा है देश का, बेकारी, महंगाई और भुखमरी, ये बात लोग समझेंगे और ये जो समाज को बांटने वाली जो राजनीति है वो एक्सपोज होगी। एक्सपोज इसलिए होगी कि मैंने आपको कहा कि कितना भी झूठ बोला जाए ना, नहीं हो सकता है। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे सामने तीन तरह की चुनौतियां हैं, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है।
कन्हैया कुमार अनेक अवसरों पर केंद्र सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक भी नजर आते हैं, जबकि कांग्रेस की नीतियों और योजनाओं का बचाव करते हैं।
और इस देश के जो नागरिक हैं, उनको ये पूछने का अधिकार है कि पीएम अपना थोबड़ा लगा करके चंदा वसूल लिए और कहते हैं कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है। तो सरकारी फंड नहीं है तो कौन सा फंड है? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री सरकारी है कि नहीं है? अगर प्रधानमंत्री सरकारी है तो उसके नाम पे लिया गया चंदा भी सरकारी, और इसका हिसाब आपको देश की जनता को देना पड़ेगा। सबको पता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री गांधीवादी नहीं है, गोडसेवादी ही है। पूरे देश को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। भारत में गोडसे अब बाइडेन के सामने गांधी करना पड़ता है। तो बोलिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारात्मक तौर पे मजबूत हुई है कि कमजोर हुई है? आप लोग बोलिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात इन हालात में कुछ नए प्रयास भी नजर आते हैं। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल एक अलग प्रकार की राजनीति करने की बात करते हैं और लोगों ने उनसे काफी उम्मीदें भी लगा रखी हैं। वैसे उनके राजनीतिक विरोधियों के अलावा कुछ टीकाकार भी उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी राजनीति के मैदान में उतर गए हैं, अलबत्ता उनका अंदाज जरा अलग नजर आता है।
सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में, आप मुझे एग्जांपल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूँ, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज़ को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूं। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूं, बिहार के लिए समर्पित कर रहा हूं।
प्रशांत किशोर का कहना है कि वे धरातल पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, काम का जज्बा रखने वालों को तलाश कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, जो मैंने नंबर दिया है मोटे तौर पे 17,500-18,000 लोग, ये वो लोग हैं जिनको मेरे साथी नीचे जाकर मिले हैं, या उन्होंने मुझे पिछले कुछ महीनों सालों में संपर्क किया होगा, या हमने जाकर उनको ढूंढा खोजा है। ये नंबर कोई फिक्स नहीं है। एज वी टॉक दिस नंबर गोज अप। मान लीजिए मैं कल किसी से मिला, उन्होंने 4 और व्यक्तियों की का रेफरेंस दिया, उन 4ों से मिल रहे हैं। बेसिक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए 20,000 के आसपास 17,000-18,000 लोग, समझिए कि 1 महीने के बाद ये 20,000 हो सकता है, ऐसे लोग जिनको यहाँ, जो इस धरती से जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ के मुद्दों की समझ है, जो लोग यहाँ के समस्याओं का समाधान निकालने की काबिलियत रखते हैं और जिनमें जज्बा है कि कुछ किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, वो हमारे संपर्क में हैं।
जहां एक तरफ लगातार हिंसा और नफरत फैलाने की कथित रूप से योजनाबद्ध कोशिशें हो रही हैं, वहीं समाज के बहुत से हिस्सों और वर्गों से इन कोशिशों को नाकाम बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के सोंडेघर के लोगों ने आपस में संकल्प लिया कि वे किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म नहीं होने देंगे।
गीता है, खरा तो एक अच्छी धर्म जगाला प्रेम अर्पाव यातून आम्ही ती स्फूर्ती घेतली आणि एकोप्याने हिंदू मुस्लिम बौद्ध समाज।
स्थानीय निवासी ने मराठी में बताया कि हिंदू मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोगों ने आपसी सद्भाव बनाए रखने का प्रण किया है। इस पूरे सराहनीय मामले में एक पुलिसकर्मी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बताई जाती है।
पालगढ़ बीट से पुलिस विकास पवार यांनी संपर्क त्यांच्याशी मी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी म्हणाले असं असं आहे जे चाललेलं आहे गाव याच्यामध्ये, तर ह्याच्यामध्ये तुमच्या सोंडेकरकडे सकारात्मक पाऊल तुम्ही टाकू शकता का?
इन लोगों को लगता है कि समाज के अंदर विष घोलने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे रोकना जरूरी है। गांव में लगभग 1000 की आबादी है जिसमें 40% हिंदू, इतने ही मुसलमान और 20% बौद्ध हैं। इस गांव में कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। इस महत्वपूर्ण कदम में महिलाओं का भी काफी योगदान है। ये चीज भी अपने आप में बड़ी सराहनीय है।
आमच्या गावातील पुरुष मंडळींच्या पाठीमागे आमच्या महिलांचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे।
गांव के प्रधान का कहना है कि वे चाहते हैं कि केवल इसी गांव में नहीं बल्कि पड़ोस के गांव में भी इसी तरह का वातावरण पैदा हो और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के करीब आए।
रत्नागिरी तालुक्यामध्ये आणि अखंड देशामध्ये हे मेसेज सर्वांना जावो आणि प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीने हे ठराव आपल्या आपल्या परीने घ्यावो।
भारत के बारे में कहा जाता है कि अलग अलग संस्कृतियों, जातियों, धर्मों, समुदायों, रीति रिवाजों का बेहद खूबसूरत संग्रह है। आपसी मेलजोल और भाईचारे का इतिहास इतना पुराना है कि इसे आसानी से खत्म कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि भारत में नफरती कार्यक्रमों का जितनी तेजी से विस्तार देखने में आ रहा है उतनी ही तेजी से इसका विरोध भी हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कार्यक्रमों का जितना विरोध अल्पसंख्यकों की ओर से हो रहा है उससे कहीं अधिक विरोध खुद बहुसंख्यक समाज की तरफ से किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा नेता हैं मगर अब भाजपा के विचारों से असहमत नजर आते हैं, वे भी अपने भावनाएं और विचार कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं।
बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर की भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं है और वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहां पर 24/7 भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि वहां पर ज्यादा दंगे भड़के, सांप्रदायिक दंगे वहां पर ज्यादा। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है तो दिल्ली में दंगे हों ताकि भारतीय जनता पार्टी वापस लौट आए। मैं आम आदमी पार्टी के इस अप्रोच से कतई सहमत नहीं कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व का, भाजपा के हिंदुत्व का मुकाबला कर सकते।
ये बात तो महसूस हो रही है कि भारत एक दोराहे पर खड़ा है। अब देखना यह है कि वो किस दिशा में आगे जाता है। श्रोताओं कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं मरियम महदादी और मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, हमेशा की तरह आज भी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय ईरान की एक अन्य सफल महिला से कराएंगे।
आज की दुनिया प्रतिस्पर्धा, प्रगति और विकास की दुनिया है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि मानव एक अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ जहाँ कहीं भी महसूस करता है बेहतर परिस्थितियों को प्राप्त कर सकता है और अपनी आंतरिक क्षमताओं को सही ढंग से मूल्यांकन कर सकता है। ईरानी महिलाओं में ऐसी महिलाएं हैं जो ज़्यादातर ईरान में पैदा हुई और फिर विदेश चली गईं, जहाँ उन्होंने प्रगति की और अब सफल और प्रभावशाली हस्तियाँ हैं। लेकिन उनकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अपनी ईरानी राष्ट्रीयता और पृष्ठभूमि को नहीं भूली हैं और उन्हें गर्व है कि उनकी नसों में ईरानी खून बह रहा है और उन्हें ईरान के गौरव और सम्मान की चिंता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ईरान की सफल महिलाओं के बारे में बात करते हैं। इसी तरह आज के कार्यक्रम में भी हम एक सफल ईरानी महिला व्यवसायी से आपको परिचित करवाएंगे।
सुमैया नूर संयुक्त अरब इमारात में रहने वाली ईरानी मूल की महिला व्यवसायी हैं। इस तरह की खबर प्रकाशित हुई थी कि जिसमें ये बात सामने आई थी कि सऊदी अरब द्वारा पवित्र काबे के जरदोजी वाले पर्दे का एक हिस्सा जिसकी बोली लगाई गई थी उसे जीतने में कामयाब हुई थी। ईरानी व्यवसायी और आर्थिक कार्यकर्ता सुमैया नूर कहते हैं कि पवित्र काबे का जरदोजी वाला पर्दा अब मेरे पास है, जिसकी बोली वर्ष 2019 में लगाई गई थी और मैंने उसे अपने नाम कर लिया था। वास्तव में ईश्वर के घर के पर्दे को नीलाम करने और उसे सौंपने की प्रक्रिया लंबी है और पर्दे के खुलने से लेकर अगले वर्ष इस्लामी कैलेंडर के ज़िलहिज्जा महीने में उसके खुलने तक इस प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष का समय लगता है। इसका अर्थ यह है कि हरमैन के कार्यालय में हमेशा एक पर्दा मौजूद रहता है। पवित्र काबे के पर्दे के बहुत से हिस्से कभी भी बेचे नहीं जाते हैं, लेकिन पर्दे के कुछ हिस्सों को नीलामी के लिए रखा जाता है।
दोस्तों, पवित्र काबे का पर्दा रिवाज के मुताबिक हर साल अरफा की रात अर्थात 9 जिलहिज्जा को बदला जाता है। जरदोजी के काम वाले पर्दे में 24 कैरेट के 124 किलो शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी नीलामी को लेकर कई तरह के विशेष कानून और दान करने के लिए विशेष अनुष्ठान हैं जो इसकी भव्यता और महानता को बढ़ाते हैं। काबे के पर्दे की ऊंचाई 14 मीटर से अधिक है। इसे बनाने में करीब 700 किलो रेशम का इस्तेमाल होता है। इस पर्दे पर पवित्र कुरान की आयतों को सोने के तारों से लिखा जाता है। साथ ही इस पर्दे में चांदी का भी प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों, काबे के पर्दे पर सूरह तौहीद के अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम या हन्नान या मन्नान या अल्लाह जैसे पवित्र शब्दों को बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा जाता है। संयुक्त अरब इमारात में रहने वाली ईरानी व्यापारी महिला सुमैया नूर पवित्र काबे के पर्दे की नीलामी के बारे में बताते हुए कहती हैं, ईश्वर के घर काबे का पर्दा केवल राष्ट्राध्यक्षों और अरब देशों के प्रतिष्ठित और कुलीन लोगों को ही बेचा जाता है। किसी भी स्थिति को पवित्र काबे के पर्दे को किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं बेचा जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसे वाला व्यक्ति काबे के पर्दे की कीमत को लेकर उसे खरीद ले, बल्कि उसकी बोली लगाने वाले लोगों के लिए भी बहुत सारी शर्तें हैं। सुमैया नूर कहती हैं कि मैंने लगभग 8 महीने तक प्रयास किया तब जाकर मैं पवित्र काबे के पर्दे की बोली लगाने में कामयाब हुई और आज की तारीख में काबे का पवित्र पर्दा मेरे पास है।
दोस्तों, इस व्यवसाय में महत्वपूर्ण बिंदु इस नीलामी की उनकी उद्देश्य पूर्णता और उनका मूल्यवान कार्य है। सुमैया नूर इस संबंध में कहती हैं कि ईश्वर के घर के पवित्र पर्दे का उच्च भौतिक और आध्यात्मिक मूल्य है, क्योंकि इसके खरीदार भी सीमित हैं और इसको एक विशेष प्रकार की पवित्रता भी हासिल है, इसलिए इस पर्दे का विशेष महत्व है। इस वजह से अब इसकी कीमत भी बहुत होगी, जिसे मैं नीलामी करके ईरान में कोरोना महामारी के प्रभावितों की सहायता में खर्च करना चाहूंगी। सुमैया नूर पवित्र काबे के पर्दे के आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में कहती हैं कि मैंने पर्दे के इस हिस्से का मूल्यांकन नहीं किया है और मैं खरीदार के प्रस्ताव का इंतजार कर रही हूँ। मेरे एक मित्र जो इस्लामी गणतंत्र ईरान के स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में हैं, तय पाया है कि नीलामी से होने वाली आय को दान करने के लिए उन अस्पतालों की एक सूची उन्हें प्रदान की जाए, जिससे वो कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों की मदद कर सकें। साथ ही मैं ऐसे परिवारों को भी इस राशि से कवर करने की योजना बना रही हूँ जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने अभिभावकों को खो दिया है।
दूसरों की मदद करना सीधे तौर पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों में पाया कि दूसरों की मदद करने और उनका सहयोग करने से दिमाग की विशेष तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, जो इंसान को एक खास तरीका का सुकून पहुंचाती हैं। शायद यही कारण है कि धार्मिक स्रोतों ने दूसरों के साथ परोपकारिता, सहायता और सहानुभूति पर बहुत अधिक बल दिया है। सुमैया नूर इस परोपकारी कार्यवाही के एक अन्य पहलू की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे विश्व प्रसिद्ध अमीर परोपकारों के बीच ईरानियों के नाम को शामिल करना है। सुमैया का कहना है कि हर बार खबरों में ये सुनने और देखने को मिलता है कि बिल गेट्स जैसे दुनिया के अमीर लोगों ने अपनी दौलत का कुछ हिस्सा मानवता प्रेमी सहायता के लिए खर्च और दान किया है, लेकिन इस तरह की खबरों में ईरानियों के नाम कम ही देखने और सुनने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में मैं हमेशा दुखी हो जाती थी, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा दान करके अपनी मातृभूमि के स्वास्थ्य के स्वर्गदूतों, देशवासियों के साथ साथ दुनिया भर के लोगों और अपने शहर कीश के लिए अपनी मदद और एकजुटता की घोषणा करती हूँ।
सुमैया नूर एक ईरानी महिला उद्यमी हैं, जो वर्षों से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रही हैं और कोई भी प्रतिबंध उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक नहीं सका है। साथ ही उनकी गतिविधियों और प्रयासों में कोई बाधा नहीं दिखती है। एक स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करने में सफल रही हैं। ईरान के इस संघर्षशील और कामयाब व्यवसायी और प्रबंधक ने उद्योग के क्षेत्र में प्रेरक पुस्तकें भी लिखी हैं। वो पश्चिमी एशिया में पितृसत्ता आधारित समाजों में महिलाओं को सफल होने और आत्मविश्वास हासिल करने का तरीका दिखाने और समझाने की कोशिश करती हैं। दृढ़ता, आत्मविश्वास और एक स्पष्ट लक्ष्य प्रत्येक पुरुष और महिला के जीवन और व्यवसाय में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। जिनके पास ये गुण हैं, वे सकारात्मक सोच और ईश्वर में विश्वास के साथ कठिनाइयों को दूर करते हैं और असफलता से निराश नहीं होते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने निर्धारित लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि सफल लोगों के नजरिए के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि ये संभव है कि हमने अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चुना है वो रास्ता ही गलत हो। एक सफल महिला का कहना है कि जिस तरह हम अपने घरों के गमलों की देखरेख बहुत ही संवेदनशीलता, गंभीरता और अच्छे से करते हैं, उसी तरह हमें अपने नामों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। आप ये कल्पना कीजिए कि आपका नाम एक प्रसिद्ध ब्रांड है जिसके सम्मान और रक्षा के लिए आपको अंत तक अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी है और सावधानी बरतनी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी सफलता को बाकी कैसे रख पाते हैं।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सफल महिलाएं, और अब समय मुख्य समाचारों की सारांश का। कतर नरेश एक दिवसीय यात्रा पर तेहरान पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि पश्चिम दुनिया को भेंट चढ़ाने के लिए तैयार है। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार ने नौ सैनिक अड्डे में शरण ले रखी है, जबकि रानिल विक्रमसिंघे देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत में 434 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं, खुदा हाफिज। Thank you.